उस बिच्छू की बात सुनकर अमित का दिमाग सुन हो गया था और उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया था। अमित गुस्से से अपने घर की ओर लौट गया था। वहां जाकर उसने चीजें पटकना शुरू कर दिया था। मल्लिका उसकी हालत देखकर परेशान हो उठी थी और जल्दी से अमित को संभालने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन अमित किसी के भी वश में नहीं आ रहा था। तब मल्लिका समझ गई थी कि अब केवल एक ही रास्ता है। मल्लिका समझ गई थी कि अब अमित को काबू करने के लिए उसे अपने जिस्म का ही इस्तेमाल करना होगा। मल्लिका ने उस बिच्छू के वहां से जाने का इशारा किया और फिर जब अमित एक बड़े से टेबल को पटक कर मार रहा था, ठीक उसी वक्त मल्लिका ने उसके सामने खड़े होकर अपनी पहनी हुई लाइट ब्लू रंग की साड़ी का पल्लू एकदम से नीचे कर दिया, जिससे मल्लिका का गहरा और शार्प गला साफ दिखाई दे रहा था। उसकी चेस्ट का काफी हिस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। मल्लिका को एकदम से ऐसी हालत में देखकर अमित का दिमाग एकदम से सुन हो गया था और वो उसे देखकर लार टपकाने लगा था और वो सब कुछ भूलकर वहीं मल्लिका को किस करने लगा था। और जल्दी ही उसने उसके ब्लाउज के सब बटन खोल दिए थे और वो उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को चूमने लगा था। और फिर जल्दी ही उसने मल्लिका को गोद उठाया और उसे उस कमरे की ओर ले जाने लगा था, जो कमरा एकदम लाल रंग की लाइट से भरा हुआ था। और जल्दी ही वे दोनों उस बेड पर आ गए थे जिस पर वे कितनी बार रिश्ता बना चुके थे। जल्दी ही पूरा कमरा मल्लिका की सिसकारियों से गूंज उठा था। और करीब डेढ़ घंटे बाद जब अमित खूब चूर हो गया, तब वो उसके ऊपर से हटा था। तब मल्लिका उसके बराबर में लेटकर उसके सीने को सहलाने लगी थी। क्या हुआ था मालिक, आप इतना गुस्सा क्यों थे? जैसे ही मल्लिका ने अमित से ये पूछा, उसका पारा एकदम से हाई हो गया था, जबकि मल्लिका की वजह से वो सब कुछ भूल गया था। लेकिन अब सब कुछ उसे फिर याद आ गया था और वो गुस्से से उठा और दहाड़ा था। वो अमन नहीं जानता क्या समझता है अपने आप को। पहले तो उसने अपनी शादी का न्योता दिया और उसके बाद वो खुद ही वहां से गायब हो गया। क्या ये ये खबर मल्लिका के लिए बेहद पेनफुल थी और ये खबर सुनकर मल्लिका को ऐसा लग रहा था मानो उसके ऊपर किसी ने बम फोड़ दिया हो। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताओ, तब अमित किलकिलाते हुए बोला था। अगर तुम साफ साफ ही सुनना चाहती हो तो सुनो, वो जिन अमन अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो गया है। हमारा पूरा प्लान एक झटके से खत्म हो गया है। और कुछ सुनना चाहती हो तुम? तब मल्लिका एक पल सोचते हुए बोली थी। अचानक से ऐसे कैसे गायब हो सकता है पूरा परिवार? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मालिक आप एक काम करो, मायावी पानी से पूछो कि वो जिन अमन और तारा कहाँ है, मायावी पानी जरूर उन्हें दिखा देगा। तब अमित संजीदगी से मल्लिका की ओर बढ़ने लगा। मल्लिका को लगा कि शायद ये उससे गुस्सा हो गया है, इसीलिए वो उसे मारने या सजा देने के इरादे से उसके पास आ रहा था। तब मल्लिका धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचती हुई चली गई थी और तभी काली शक्तियों का मालिक अमित उसके बेहद करीब जा पहुंचा था और उसने मल्लिका को उसकी कमर से पकड़ा और उसके होंठों को चूमने लगा। उसने पूरे 10 मिनट तक मल्लिका के होंठों को चूसा था और उसके बाद बोला, वाओ ब्यूटी विद ब्रेन, तुम जानती हो मैं ये सोच सोचकर बहुत परेशान हो रहा था कि आखिर वो लोग कहां जा सकते हैं, और वो भी मेरी नाक के नीचे से। तब तक मेरे ख्याल में वो मायावी पानी दूर दूर तक नहीं था। जल्दी आओ मेरे साथ, हम अभी पता लगाते हैं कि वो लोग आखिर हैं कहाँ। ये कहकर अमित मल्लिका को उल्टे सीधे कपड़े पहनाकर जल्दी से मायावी पानी वाले कमरे में ले आया था और उसने कुछ मंत्र मायावी पानी में पढ़कर फूंका और देखते ही देखते उसमें शादी के जोड़े में खड़े हुए तारा और अमन नजर आने लगे थे। उस मायावी पानी में भी तारा की खूबसूरती बढ़ चढ़कर दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर अमित अपना हाथ मसलने लगा था। तारा की खूबसूरती देखकर अमित की आंखें चौंधी आ गई थी और अमन को देखकर मल्लिका जल भुनकर राख हो गई थी। अमित ने बहुत ही कोशिश की थी ये जानने के लिए कि आखिर ये कौन सी जगह है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे। तारापरी और अमन को तो मायावी पानी में वो देख सकते थे, लेकिन रानी माँ का बनाया हुआ महल वो लोग नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्हें उसका एड्रेस नहीं मिल पाया था। और वे दोनों हाथ मसलते तारापरी और अमन का विवाह देखने लगे थे। वहीं अमन और तारापरी एक दूसरे को देख रहे थे। अमन की नजरें तो तारापरी की खूबसूरती से हट ही नहीं रही थी। वेल, तभी करिश्मा जी और रानी माँ दोनों वहां आई और उनके साथ एक बेहद बूढ़े हो चुके बाबा थे। जैसे ही तारापरी और अमन ने उन बूढ़े बाबा को देखा, उनके होश उड़ गए थे। वो बूढ़े बाबा कोई और नहीं बल्कि वही बाबा थे जिन्होंने पिछले जन्म में राधा और मोहन की शादी कराई थी, और वो बाबा वही थे जिस गांव में एक बार अमन और तारापरी फंस गए थे और वो बूढ़े बाबा उन्हें उनकी मूर्ति तक ले गए थे। तारापरी और अमन को एक एक बात याद आ गई थी और उन्होंने एक दूसरे का हाथ बड़ी ही मजबूती से थाम लिया था, मानो अब मौत करे तो करे लेकिन वे अब जुदा नहीं होंगे। और फिर जल्दी ही बड़े ही शानदार आगाज के साथ शादी की रस्में शुरू होने लगी थी। तारापरी बेहद खुश थी, आज वो होने जा रहा था जिसके लिए वो पृथ्वी पर आई थी। लेकिन जैसे ही जयमाला की रस्म हुई, तब मान सामने आ गया। अमन के जिस्म में ही तब एक बार जयमाला अमन के साथ हुई तो एक बार मान के साथ। अब उन दोनों भाइयों के जिस्म अलग अलग नहीं थे बल्कि उनके जिस्म अब एक थे। करिश्मा जी एक एक रस्म को दो दो बार करा रही थी क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि मान और अमन अब एक साथ ही रहेंगे और वे दोनों ही तारा बेटी से शादी करेंगे। पहले तो ये बात वहां पर सब लोगों को अजीब लगी थी लेकिन करिश्मा जी के समझाने पर सब मान गए और जल्दी ही सब तामझाम के साथ उन दोनों की रॉयल वेडिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तारा परी और अमन ने अपने सभी बड़ों के आशीर्वाद लिए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। धीरे धीरे सब मेहमान जितने भी गांव के लोग थे वे सब वहां से चले गए थे। सबके जाने के बाद रानी माँ ने तारा परी की विदाई की इजाजत भी दे दी थी। तारा परी को याद आया कि अगर आज ये शादी मेरे अपने के बीच हो पाई है तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मोहन है क्योंकि मोहन की आत्मा ने ही परीलोक में जाकर उसकी माँ को सारी बात बताई थी और ये भी बताया था कि इस राक्षस का एक रूप पृथ्वी पर तारा परी के पास है। अगर उस वक्त मोहन तारा परी की मदद नहीं करता और उसकी माँ यानी रानी माँ को उसकी मदद के लिए नहीं पुकारता तो शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन यूं ही बीत जाता बिना उसके परिवार के प्यार के। वेल तारा परी ने सोच लिया था कि वो अमन के साथ विदा होकर जाने से पहले मोहन की कब्र पर जरूर जाएगी क्योंकि उनकी शादी राधा के गांव में ही हुई थी तो इसका मतलब साफ था वो खंडहर जिस खंडहर में राधा मोहन चोरी चोरी मिला करते थे वो खंडहर जरूर वहीं कहीं आसपास होंगे। ये सोचकर तारा परी ने अपना इरादा अमन को बताने का मजबूत कर लिया था। उसे बस मोहन के बारे में अमन को बताना था। उसे पूरा यकीन था अमन जरूर उसे लेके चलेगा लेकिन तारा परी और अमन की शादी होने के बाद अमन को तारा परी से मिलने का मौका ही नहीं मिला था। सोनल परी और मीनल परी तारा परी को अंदर ले गई थी जबकि अमन रानी माँ और करिश्मा जी के बीच उलझ कर रह गया था। रानी माँ ने करिश्मा जी से कहा था, वो करिश्मा जी हमारे यहाँ नए नवेले दूल्हा दुल्हन पास में ही बने एक मंदिर में पूजा अर्चना करके आते हैं। ये यहाँ का रिवाज है। शादीशुदा जोड़े यहाँ एक दूसरे की लंबी उम्र और बच्चों की मांग करते हैं और हमारे कुल देवता उसे पूरा भी करते हैं।
करिश्मा जी ने जैसे ही ये सुना वो खिल उठी थी। असल में ये रिवाज उस गांव का नहीं बल्कि परीलोक का था, इसलिए रानी माँ ने चाल चली थी कि वो अपने कुल देवता के मंदिर को तारा परी और अमन के लिए कुछ देर के लिए ही सही लेकिन यहाँ जरूर लेकर आएगी। करिश्मा जी ने खुश होकर रानी माँ से कहा, ठकुराइन जी अब जो भी रस्म आपको करानी है बच्चों से कराइए लेकिन आपको मुझे इजाज़त देनी पड़ेगी क्योंकि मुझे सबसे पहले घर जाकर अपनी बहू के भव्य स्वागत की तैयारियां भी करनी है, इसलिए मुझे कल सुबह होते ही यहां से निकलना होगा और जैसे ही अमन और तारा बेटी की रस्म पूरी हो जाएगी जो भी आपको करानी है उसके बाद आप इन दोनों को भेज दीजिएगा। तब रानी माँ, ओ ठीक है करिश्मा जी, आपको भेजने की इच्छा तो नहीं है लेकिन हम भी समझते हैं, आपके भी कुछ अरमान होंगे इन दोनों को लेकर। चलिए ठीक है, हम कल सारी रस्में पूरी होने के बाद इन दोनों को शहर छुड़वा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। जी ठीक है, ऐसा कहकर वे दोनों एक दूसरे के गले मिली और रानी माँ करिश्मा जी को लेकर उनका कमरा दिखाने चली गईं, जहाँ उन्हें रात भर के लिए आराम करना था। अमन वहीं खड़ा रह गया और सोचने लगा, ये हो क्या रहा है, मेरे साथ आज मेरी शादी हुई है, आज मेरी फर्स्ट वेडिंग नाइट है लेकिन यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आखिर है कहाँ मेरी बीवी, मैं कहाँ जाऊँ, अपनी बीवी के कमरे में या अपने कमरे में, मेरी बीवी मेरे कमरे में आएगी या मैं अपनी बीवी के कमरे में जाऊंगा, यहाँ तो कोई है भी नहीं कुछ बताने वाला। अमन अपनी सोच में गुम उसी कमरे में जाकर बैठ गया जिस कमरे में वो तैयार हुआ था। वहीं तारा परी बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। कहने को तो आज उसकी शादी हुई थी लेकिन आज की रात ही उसे अपने पति से मिलने की परमिशन नहीं थी क्योंकि रानी माँ ने उसे साफ कह दिया था कि जब तक कि वे दोनों मियाँ बीवी अगली सुबह कुल देवता की पूजा नहीं कर लेते तब तक वे दोनों एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकते थे। लेकिन तारा परी को तो अमन से मोहन की कब्र पर चलने की बात भी बोलनी थी, पर वो कैसे अमन से मिले।